समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और अगले आधे घंटे तक मैं रहूंगा शगुन के साथ, और मैं और शगुन आपको दिनभर के लिए तैयार करेंगे। दिनभर के लिए तैयार करेंगे मौसम का हाल बताकर, दिनभर के लिए तैयार करेंगे दिनभर की खबरें बताकर कि किस पर आप चर्चा कर सकते हैं। और जब आप महफिल में बैठेंगे ना अपने दोस्तों के साथ, तो आप ये कह सकेंगे भाई ये तो मुझे पहले से ही पता था, और फिर देखिए आपके बल्ले बल्ले, अरे वाह आपको इतना सब कुछ पहले से कैसे पता था। तो फिर आप हमारा नाम ले दीजिएगा, कहिएगा कि आकाशवाणी सुना था आज सवेरे और उसी से मुझे पता चला कि आज दिन भर क्या रहेगा। और शगुन मुझे इशारा कर रही है कि आज मौसम एक बार फिर अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि आज दिन भर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और लगभग अगर बात करें तो उत्तर भारत में एक बार फिर तेज बारिश की संभावना है। क्यों शगुन?
राइट, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन एंड ड्रिजल ओवर मेनी मेनी पार्ट्स। सो बिफोर ऑल ऑफ दैट, नमस्कार एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, एंड वील फोकस ऑन द क्वेश्चंस एज नवीन हैज ऑलरेडी टोल्ड यू, सच एज व्हाट आर द लेटेस्ट इंटरनेशनल एंड नेशनल एंड मेट्रो सिटी updates and what sets this day, that is 2nd of August, apart. We'll cover all of this and more, and we'll tell you why this date is important. Just make sure to stick around till the very end, dear listeners. We'll begin with the headlines first, shall we? President Draupadi Murmu will preside over a two-day conference of governors at Rashtrapati Bhavan commencing from today. This is the first conference of governors to be presided over by the president. Governors of all states will attend the conference. Vice President Jagdeep Dhankar, Prime Minister Narendra Modi and several union ministers including Amit Shah, Dharmendra Pradhan, Shivraj Singh Chauhan, Ashwini Vaishnav and Dr. Mansukh Mandaviya will also attend the conference. The Vice Chairman and CEO of Niti Aayog and other senior officials from the PMO and Cabinet Secretariat in the Home Affairs Ministry will also participate. Our correspondent reports that the agenda of the conference includes the implementation of three criminal laws, reforms in higher education and accreditation of universities, and the development of focus areas. Several other important issues, including the role of governors in campaigns and better coordination between various central agencies in the state, will also be discussed.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार में नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में कल 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र के अनुसार इस मामले में मुख्य आरोपी मनीष प्रकाश, सिकंदर यादवेंदु और 11 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे जांच जारी है। कई अन्य आरोपी पहले से ही पुलिस और न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 58 स्थानों पर तलाशी ली है, और जांच में पता चला कि नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से एक दिन पहले झारखंड के हजारीबाग केंद्र से लीक हुए थे।
Prime Minister Narendra Modi met the Speaker of the House of Representatives of Japan, Nukaga Fukushiro, and his delegation of Japanese Parliament and business leaders last evening. The Prime Minister highlighted the conducive business environment and reforms undertaken in India for more investment and technology from Japan. He assured the government's full support to the visiting delegation for these endeavours. The meeting underscored the robust India-Japan Special Strategic and Global Partnership, highlighting key areas of collaboration and mutual interest with focus on people-to-people cooperation. It also reiterated the importance of parliamentary exchanges between India and Japan. Mr. Nukaga proposed that India and Japan nurture and train the next-gen workforce in different trades, including by conducting training in Japanese language, culture and work practices. He stressed on the role of the private sector also in these endeavors.
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल टेंडर आवंटन घोटाले में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य सतर्कता ब्यूरो ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। आशू को ईडी ने जांच के लिए बुलाया था और मंडियों से अनाज के परिवहन से संबंधित घोटाले में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की थी।
BJP National President JP Nadda met Prime Minister of Vietnam Pham Minh Chinh in New Delhi yesterday as part of the No BJP initiative. Mr. Nadda offered condolences on the passing away of General Secretary of Communist Party of Vietnam, Nguyen Phu Thong. Both the leaders reflected on the remarkable growth in bilateral ties between India and Vietnam over the past decade. As the Minister of Health and Family Welfare, Mr. Nadda proposed strengthening collaborations in the health sector with Vietnam. He emphasized the mutual benefits of sharing expertise and resources to improve healthcare outcomes in both countries. They also resolved to further enhance party-to-party relations through the exchange of delegations between BJP and Communist Party of Vietnam in the near future.
उत्तराखंड में ट्रैकिंग के रास्ते पर भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इस बीच एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन ने समन्वित प्रयासों से यात्रा मार्ग पर फंसे 2000 से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। भीमबली, रामबाड़ा और लिंचोली से लगभग 425 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि सोनप्रयाग और भीमबली के बीच 1100 अन्य लोगों को कल सुरक्षित रूप से वापस भेजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया और बचाव शिविरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बुधवार रात को ही भारी बारिश से राज्य में सड़कों, पैदल पुलों, बिजली और पानी की लाइनों और कृषि भूमि को भारी नुकसान हुआ था।
Well, Prime Minister Narendra Modi is closely monitoring the situation arising from heavy rains and ensuing disaster. The Prime Minister's office has been informed on the entire situation. The Air Force has deployed Chinook and Mi-17 helicopters for rescue operations and 3 ATF tankers have been sent. The Prime Minister's office has assured full support following the Chief Minister's request.
कुशल भारत विकसित भारत अभियान के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कल लखनऊ में कौशल भारत मिशन के प्रशिक्षकों और लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एमएसडीई जयंत चौधरी मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में उत्तर प्रदेश को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए लगभग 2,44,00,000 रूपये की धनराशि आवंटित की गई है।
Another batch of 1,221 pilgrims left Bhagwati Nagar Yatri Nivas base camp in Jammu for the Kashmir rally to perform pilgrimage to Amarnath Cave Shrine. The pilgrims left the base camp in a cavalcade of 54 vehicles early this morning.
बाबा अमरनाथ बम बम भोले हम में उनमें हम बाबा अमरनाथ बम बम भोले हम में उनमें हम चढ़ते पर्वत कदम कदम डमरू डम 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 डम
Of these, 395 pilgrims left for Baltal Base Camp and 826 for Pehelgam Base Camp at 3:28 AM, from where they will proceed for their further journey to the holy cave.
तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आज सवेरे में वक्त हो चला है आपके शहर की खबरें जानने का, तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ शगुन और फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के साथ मैं नवीन।
वेल, बिगिनिंग इन दिस रिगार्ड विद चेन्नई, वीओसी चिदंबरनार पोर्ट इन तूतीकोरिन इज प्लानिंग टू स्केल अप द कार्गो हैंडलिंग टू अ कैपेसिटी मोर देन 81 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। द पोर्ट हैज सेट अ टारगेट ऑफ हैंडलिंग 50 मिलियन टन ऑफ कार्गो डिस्पाइट कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। इट हैज अचीव्ड 40 मिलियन टन ऑफ कार्गो लास्ट ईयर। द पोर्ट इज planning for capacity augmentation and cargo evacuation plans to increase productivity and reduce the turnaround time of the vessels calling the port. Now moving on to Bengaluru. A comprehensive cybersecurity policy 2024 was launched yesterday in Bengaluru by Karnataka state government. The Department of Electronics, IT, BT and Science and Technology, the Department of Personnel and Administrative Reforms and E-Governance and the Home Department had drafted the policy after consultations with the stakeholders. The policy was reviewed by the Indian Institute of Science. Its goal is to build a strong cybersecurity ecosystem and protect IT assets in the state. A sum of over 103 crore rupees met with the budgetary allocation of the IT and BT department will be used to implement the policy in 5 years. Moving on to Hyderabad now, the Telangana State Cabinet has approved the job calendar for issuing job recruitment notifications this year to fill vacancies in government departments. Chief Minister A. Revanth Reddy will release the job calendar in the Legislative Assembly. Issuing a job calendar every year on the lines of the UPSC was one of the major poll promises made by the Congress during the Assembly elections last year. This will help students know in advance when job notifications will be issued and keep track of the exam dates, completion of the recruitment process and the number of vacancies. The cabinet meeting chaired by Revanth Reddy has been held in the premises of Legislative Assembly after the House was adjourned for the day last evening. The cabinet discussed a wide range of issues and took important decisions. Briefing the media later, Information and Public Relations Minister P. Srinivas Reddy said that all the details pertaining to the job calendar will be placed in the Assembly. Staying with Hyderabad only, the Telangana State Cabinet has passed a resolution expressing deep sorrow at the heavy toll in the devastating landslides in Wayanad. It extended sympathies to the bereaved families. The Cabinet also pledged to provide necessary relief measures for those affected by the calamity. The Cabinet meeting, chaired by Revanth Reddy, has been held in the premises of Legislative Assembly after the House was adjourned for the day last evening in Hyderabad. Briefing the media later, P. Srinivas Reddy, the Information and Public Relations Minister, said all the details pertaining to the job calendar will be placed in the Assembly. The Telangana Cabinet also approved allotment of 600 square yard house sites in Hyderabad to sportspersons Isha Singh, Nikhat Zareen and Mohammed Siraj. Nikhat and Siraj will also be provided Group 1 jobs. In a move to revive the closed Nizam Sugar Factory, the Cabinet approved payment of outstanding arrears in a second installment. The feasibility of producing ethanol and electricity at the factory sites will be examined. A Cabinet subcommittee led by Industries Minister D. Sridhar Babu has been set up to examine the same. These were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now what are the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata? Naveen will tell us.
शुरुआत दिल्ली से करते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की नियमित प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के बाद खाली सीटें 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर भरी जाएंगी. स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सभी सीटों को भरने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इस प्रक्रिया का पालन करना होगा. यूजीसी ने कहा है कि पूरे शिक्षा सत्र के लिए सीट खाली रखना न सिर्फ संसाधनों की बर्बादी है बल्कि अनेक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से वंचित करना भी है. अगली खबर, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, क्वाडकॉप्टर और माइक्रो लाइट विमान की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली पुलिस ने 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया है जो इस महीने की 2 तारीख से यानी कल से 16 तारीख आज से और 16 तारीख तक लागू रहेगा. वहीं दिल्ली एम्स की खबर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अपने परिसर में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगा. इससे परिसर के भीतर आवागमन आसान हो जाएगा. इन बसों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे. एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉ प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने कहा कि अपने मरीजों को सर्वोत्तम रोगी देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए की जा रही ऐसी पहल के तहत एम्स मरीजों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन के तहत विकसित 2 स्वदेशी स्वास्थ्य सेवा तकनीकों को हस्तांतरित किया है. मंत्रालय के अनुसार प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए डीएनए एप्टामर तकनीक को कोलकाता के HUMMSA बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के डॉ स्वप्निल सिन्हा को हस्तांतरित किया गया है. यह एप्टामर कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता वाले विशिष्ट ऑन्कोजिन से लड़ने में सक्षम है और कैंसर के लिए थेरोनोस्टिक्स के रूप में उपयोगी हो सकता है. रुख करते हैं मुंबई का. मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में विशेष रूप से कोंकण क्षेत्र, पुणे और कोल्हापुर में तेज बारिश की चेतावनी दी है. इन क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि होने की आशंका है. विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पालघर, ठाणे और मुंबई में गरज और आंधी के साथ बारिश की संभावना है. विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता निशानेबाज स्वप्निल कोसाले को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वप्निल को फोन पर बधाई दी और उन्हें प्रशिक्षण में हर संभव सहायता देने का आश्वासन किया. वहीं कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले को सेंट्रल रेलवे ने प्रमोशन दिया है। महाप्रबंधक ने बताया कि स्वप्निल कुसाले को पहली आउट ऑफ टर्न पदोन्नति की मंजूरी दे दी गई है, जो वर्तमान में ग्रुप सी में कार्यरत हैं। और अब चलते हैं कोलकाता की ओर। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने आज पूरे दक्षिण बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कोलकाता में कल भारी बारिश से यातायात जाम हो गया और दैनिक दिनचर्या बाधित हो गई थी। पूर्वानुमान के मुताबिक आज दिनभर बारिश हो सकती है, तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन नमी बढ़ी रहेगी जिससे परेशानी बढ़ेगी। और अब जान लेते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है।
Well, Chennai, Naveen, is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. As we were talking about it, the minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain. The temperature will hover between a minimum of 20 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius.
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। इसके अलावा मुंबई में भी आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 26 डिग्री और कोलकाता में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। इस बीच हम जुड़ चुके हैं अपने वैज्ञानिक वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जैनामणि से, जो मौसम के बारे में और ताजा जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं आज उनसे दिनभर क्या कुछ रहेगा देशभर का हाल। जैनामणि जी नमस्कार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जनवरी जी, आज कैसा मौसम रहेगा दिल्ली और विशेषकर मुंबई और कोलकाता में, क्या आप जानकारी देंगे?
देखिए, कोलकाता में तो एक मतलब कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, इसके कारण से कोलकाता जैसे बंगाल का अगर बात करें तो बंगाल में बारिश होगा, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल
जी।
इसलिए हम लोग जो पूर्व भारत है वो अभी ऑरेंज कलर अलर्ट पर है, जैसे बंगला है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये सब जगह में, झारखंड में
जी।
और अगर दिल्ली का बात करें, राष्ट्रीय राजधानी, तो यहाँ ऐसे एक या दो स्पेल रेन हो सकता है और हम लोग जैसे लाइट टू मॉडरेट रेन दिया है येलो अलर्ट में, तो क्योंकि मानसून ट्रफ जो है वो दिल्ली के आसपास है, दिल्ली के ऊपर है, तो इसकी वजह से ये रेन का जो है कंटिन्यू करेगा। और जो अगर हैवी रेनफॉल का बात करें तो उत्तर भारत में तो हैवी रेनफॉल का भी अलर्ट है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, और पहाड़ी में तो वेरी हैवी रेनफॉल ऑरेंज कलर का अलर्ट है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तो बहुत फेवरेबल कंडीशन है बारिश ज्यादा होने का।
जनवरी जी, उत्तराखंड में मौसम का क्या हाल रहेगा, क्योंकि वहां पे केदारनाथ यात्रा भी रोक दी गई है, आगे के लिए आप क्या जानकारी देना चाहेंगे?
नहीं जरूर, क्योंकि अभी जो मानसून है बहुत ही फेवरेबल है उत्तराखंड हिमाचल में, जैसे आइसोलेटेड क्लाउड बर्स्ट भी हो जाता है ये सब कंडीशन में, और आजकल काफी फेवरेबल है, तो इसलिए ये सब देखते हुए हम लोग भी ऑरेंज कलर अलर्ट दिया है आज के लिए उत्तराखंड एंड हिमाचल दोनों के लिए। और मैं जैसे बता रहा था पूर्व राजस्थान पश्चिम राजस्थान में भी हैवी रेनफॉल हो सकता है, लेकिन जैसे बॉम्बे है इसमें कम बारिश अभी चल रहा है
जी,
लेकिन जो केरल और कर्नाटक है इसमें हैवी रेनफॉल
जी। जनमन जी, चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में अगले एक दो दिन में क्या हम फिर वैसी पुरानी जो बारिश अभी परसों हुई थी वैसी बारिश का अनुमान हो सकता है क्या?
नहीं देखिए, हैवी रेनफॉल तो जो अभी कंडीशन थोड़ा फेवरेबल है, लेकिन ज्यादा जो है आइसोलेटेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल के लिए है, लेकिन हैवी रेनफॉल का हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसे कोई वार्निंग नहीं।
जी, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर की खबरें हो गई, मौसम की जानकारी हो गई, और अब हम पलटते हैं आज सवेरे का, और हमें नजर आता है खेल का पन्ना। ओलंपिक सातवां दिन, आज बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी खिलाड़ी से होगा। मनु भाकर जो है निशानेबाजी में एक बार फिर उतरेंगी। पुरुष हॉकी का मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा, तो वहीं जूडो, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और गोल्फ सहित कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। शगुन कल का दिन भारत का बहुत मिला जुला रहा, जब दिन शुरुआत हुई थी तब हमने कांस्य पदक जीता, लेकिन उसके बाद जैसे दिन ढलता चला गया तो थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहरहाल अब क्या हाल है?
वेल यस्टरडे ओनली इंडियन शूटर स्वप्निल कुसाले ही बैग्ड ब्रॉन्ज मेडल इन द पेरिस ओलंपिक्स एंड ही हैज बीन गिवन अ प्रमोशन बाय द सेंट्रल रेलवे ऑन अकाउंट ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। वेल नो डाउट अबाउट दैट, द जनरल मैनेजर अप्रूव द फर्स्ट आउट ऑफ टर्न प्रमोशन टू स्वप्निल कुसाले यस्टरडे, who currently works in Group C. After the promotion, he will be working on the Group B gazetted cadre. Currently, Swapnil Kusale is working as a ticket checker in Pune division of the Central Railway. And for more information, we have more information from our correspondent, Savio, from Paris.
India begin action today with golf, where Shubhankar Sharma and Gaganjit Singh Buller will be taking Indian hopes forward. The latest sensation from the Indian contingent, Manu Bakker, will once again be the focus of attention, and along with Isha Singh, both will be competing in shooting in the women's 25-meter pistol event. Ananjit Singh Naruka is also in the fray in men's shooting. In archery, India will battle Indonesia in the mixed team elimination round. Netra Kumanan and Vishnu Saravanan in sailing and Tulika Mann in judo will all be living their Olympic dream. India play Australia in hockey today, and Ankita and Parul Chaudhary are the two women running the 5,000 meters. Tajinder Pal Singh Tur, reigning Asian Games gold medalist, will be giving his best in the shot put.
शगुन, आज ही भारत और श्रीलंका के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भी कोलंबो में खेला जाएगा।
राइट, एंड द मैच विल बिगिन एट 2:30 PM एट आर प्रेमदासा स्टेडियम, एंड ऑल आईज विल बी ऑन द स्टार इंडियन बैटर्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, एज दे विल बी सीन अगेन इन द एक्शन इन ब्लू जर्सी। सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एवरीबडी इज। रोहित शर्मा लेड स्क्वाड विल एम फॉर अनदर क्लीन स्वीप एज द यंग टीम इंडिया डिफीटेड द होस्ट 3-0 इन द रिसेंटली हेल्ड T20 सीरीज।
और शगुन, सबसे बड़ी बात यह है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 2 साल के अंतराल के बाद अब एक दिवसीय श्रृंखला में वापसी कर रही है, तो सबकी नजरें ऋषभ पंत पर रहेंगी। बहरहाल खेलों की खबरें भी हो चुकी हैं, और अब जिसका आपको इंतजार रहता है, इतिहास की बातें। अगस्त साल का एक ऐसा महीना है जो हमें जोश से भर देता है, क्योंकि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की जो जश्न की जो तैयारी है शगुन, वो शुरू कर देते हैं। वो दिन जिसने देश में रोशनी और उम्मीदें जगाई। तो आइए जानते हैं आज के दिन गुजरे हुए जमाने में क्या कुछ हुआ था। बात करते हैं सबसे पहले 1858 की। ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही के हाथ में चला गया था। भारत में ब्रिटिश सरकार के शीर्ष प्रतिनिधि के रूप में वायसराय का जो था वो ओहदा बनाया गया था।
वेल अगेन फ्रॉम दैट वील बी ट्रेवलिंग टू 1763, द ब्रिटिश ट्रूप्स डिफीटेड मीर कासिम इन गिरिया बैटल।
जी, 1947 आज ही का दिन था जब महात्मा गांधी जी कश्मीर की यात्रा पर थे, और इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से अशांति वाले इलाकों में संभाव, सद्भाव और एकजुटता से रहने का आग्रह किया था, और इस यात्रा को महात्मा गांधी की कश्मीर की पहली और एकमात्र यात्रा माना जाता है।
इन 1959 लिटिल थिएटर वॉज एस्टैब्लिश्ड।
1790 आज ही का दिन जमावीका में पहली बार जनगणना हुई थी, और 1831 में आज ही के दिन नीदरलैंड की सेना ने 10 दिन के अभियान के बाद बेल्जियम पर कब्जा किया था।
इन 1970 श्रीमती चुनीरा बिलियाप्पा मुथम्मा इंडिया फर्स्ट वुमन एम्बेसडर वॉज डिप्यूटेड एट हंगरी।
लंदन में विश्व का पहला भूमिगत ट्यूब रेलवे टॉवर सबवे आज ही से शुरू हुआ था, और वो सन था 1870।
In 1987, Vishwanath Anand became the first Asian to win the World Junior Chess Championship.
और अब याद करते हैं उन महान व्यक्तियों को जो आज के दिन जुड़े हुए हैं। बात सबसे पहले सन 1861 की आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, आज उनकी जयंती है, जिन्हें भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। वो रसायन विज्ञान में पहले आधुनिक भारतीय अनुसंधान स्कूल और भारत की पहली दवा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक थे। प्रफुल्ल चंद्र राय की प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि उनकी आत्मकथा लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंगाली केमिस्ट एक बंगाली रसायनज्ञ के जीवन और अनुभव के प्रकाशित होने पर अप्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और लिखा कि लिपिबद्ध करने के लिए शायद प्रफुल्ल चंद्र राय से अधिक विशिष्ट जीवन चरित्र किसी और का नहीं हो सकता.
राइट, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, द इन्वेंटर, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन व्हिच रेवोल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशन एज वी नो इट. राइट नवीन
जी,
His invention of the telephone grew out of his research on improving the telegraph. Many other inventions marked his life, including groundbreaking work in optical telecommunications, hydrofoils and aeronautics.
Aur shagan agar telephone nahi hota na ab to shayad ye wala geet nahi hota, mere piya gaye rangoon wahan se kiya hai telephone.
Absolutely I agree with you.
1876 आज ही का दिन जब भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार करने वाले स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी के अनुयायी पिंगली वेंकैया नायडू का जन्म हुआ था कृष्णा जिले के दीवी तहसील में. अपने पहले डिजाइन में वेंकैया ने ध्वज में लाल और हरी पट्टियां जोड़ी थी और हालांकि गांधी के सुझाव जी के सुझाव पर उन्होंने देश के सभी धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सफेद पट्टी भी जोड़ी. ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था और एक बहुत ही खूबसूरत संगीत है श्यामल चरण गुप्त का, झंडे पर सुनते हैं और याद करते हैं.
Also remembering Jimmy Jones, the American singer-songwriter, he is best known for his 1960 R&B smash Handyman. He started his entertainment career as tap dancer and joined a group named the Berliners in the year 1954. And now, I'll let the music speak. So dear listeners, listen to this song, Handyman by him.
Because of what I'm putting down. Ooh, baby, I'm your handyman. I'm not the kind that uses a piece of wood.
हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्हें हम उनके असली नाम से कम जबकि फिल्मों में उनके किरदार से उन्हें ज्यादा पहचानते हैं. कमल कपूर एक ऐसे ही कलाकार थे जिन्हें हमने कई फिल्मों में देखा लेकिन जाना सिर्फ डॉन के नारंगी के किरदार से. आज उनकी पुण्यतिथि है. उनके कुछ चुनिंदा संवाद, चुनिंदा डायलॉग हम चुनकर लेकर आए हैं. आइए और उन्हें याद करते हैं.
अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है तो कल हमारे लिए खतरनाक हो सकता है. जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है उसका जिंदा रहना भी खतरनाक है. हमें लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए.
नारंग, मैं लापरवाही से कभी कोई काम नहीं लेता.
वो तो मैं देख रहा हूं. डॉन, हमारे पेशे में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं. तुम्हारा इस तरह से किसी होटल के स्टीम बाथ में होना बहुत रिस्की बात है.
तुम ये समझती
हो. वेल, वी आर रिमेम्बरिंग वी दक्षिणामूर्ति. ही इज veteran Carnatic musician and composer and music director of Malayalam, Tamil and Hindi films. He has set scores for the songs in over 125 films and composed as many as 1400 songs over a period of 63 years. He was instrumental in pioneering classical music based film songs. And well, we are also remembering Enrico Caruso, Italian operatic first lyric tenor, then dramatic tenor. He sang to great acclaim at the major opera houses of Europe and America, appearing in a wide variety of roles that ranged from the lyric to the dramatic. Caruso made around 250 commercially released recordings from 1902 to 1920. And listeners, you're listening to O Sol Mio by him.
Oh, आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ये अंक बहुत बहुत पसंद आया होगा। बहरहाल चलते चलते मैं नवीन और शगुन आपको खूबसूरत विचार के साथ छोड़े जा रहे हैं। सुकरात ने कहा था, गिरना असफलता नहीं है, असफलता तब आती है जब आप वही रहते हैं जहां आप गिरे थे।
वेल स्टे ट्यून फॉर समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन विच इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।